श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में वेंकट भट्ट के घर में 4 महीने तक रहे। वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती पाद, ये तीनों भाई थे और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत साहित्य में अपूर्व दखल था, परंतु पहले ये लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। श्री रंगम के मंदिर के जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनके उपासक रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, 4 महीने तक उनके घर में रहे। महाप्रभु जी ने उनको राधा कृष्ण के उपासना वैशिष्ट बताया। जो लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर बेल वन में तपस्या करती हैं कृष्ण के रास में प्रवेश करने के लिए, और आज तक नहीं पा रही हैं, प्रयास करती जा रही हैं, सत सहस्त्र संभ्रम से ब्रह्मांड, सैकड़ों प्रकार से, हजारों प्रकार से लक्ष्मी जी कृष्ण की चरण कृष्ण की सेवा करने के लिए लालायित, सेवा पर आए। तो ऐसे कृष्ण का माधुर्य अतिशय सर्वोर्धम है। यह समस्त तत्वदर्शन महाप्रभु जी ने उनको सुनाया और कृष्ण भजन में प्रवृत्त कराया। भगवान कृष्ण की आराधना करना ही सर्वश्रेष्ठ है। नारायण की उपासना से कृष्ण के माधुरी और चमत्कारिता अतिशय रूप में अधिक है। यह समस्त समझाते हुए उनको राधा कृष्ण की उपासना में प्रवृत्त कराया।
ओम अज्ञान से ज्ञानंजन सिलक। सो इन वृंदावन टुडे वी हैव कम एट कालियादेह कालियादेह एंड इन दिस कालियादेह राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट समाधि ऑफ प्रबोधानंद सरस्वती पाद। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद was doing bhajan also here. So it is not only his samadhi, another way we can call it, his bhajan kutir was also here and as well as samadhi was also here. So Prabodhananda Saraswati, Venkat Bhatt and Sri Rangam, Srimalla Bhatt, these three brothers were living in Sri Rangam in South India. Sri Rangam is the most famous temple of Lakshmi Narayan. All these three were dedicated devotee of Sri Rangam, that is Lakshmi Narayan. So when Chaitanya Mahaprabhu went there, and on request of Venkat Bhatt, he stayed at their house for 4 months during Chaturmasya. At that time, lot of satsang took place at his house. Rather, I should say at their house. At that time, Chaitanya Mahaprabhu asked, why do you worship Lakshmi Narayan? Why don't you worship Radha Krishna? And Venkat Bhatt said that Narayan and Krishna is one and the same thing. What makes the difference? Chaitanya Mahaprabhu smiled. He says, consort of Narayan is Lakshmi. Yes, she is Lakshmi. But it is said in scripture that Lakshmi has keen desire to take part in Krishna's Raj. If both are same, then why consort of Lakshmi is desiring to take part and to love Krishna, to have Ras with Krishna? Then again he says, because Narayan and Krishna is same. He says, if Narayan and Krishna is same, then Lakshmi should have no problem in getting chance to take part in Ras. But it is said that she is still doing tapasya, austerity at Bail Van, to take part in Ras, but still she could not take. Then he was answerless. You know why it is so? Because Krishna in Vrindavan is his real state of Godhead, the Supreme Personality of Godhead in its fullest form exists in Golok Vrindavan. So you should devote love and worship Radha Krishna, and that too in the mood of serving Radharani. From there, Prabodhananda Saraswati
and Venkat Bhatt, they all turned into Krishna Bhakta. From Ravanuj Sampradaya, they converted into Mahaprabhu's Sampradaya. And we know one of our Goswami is son of Venkat Bhatt, that is Gopal Krishna, Gopal Das Bhatt Goswami. And Prabodhananda Saraswati also came to Vrindavan, and he has written such a many Vedic scriptures. इस प्रकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी का परम अनुग्रह लाभ करते हुए वृंदावन धाम को प्राप्त किया। इस स्थान में आकर के उन्होंने बहुत दिनों तक रहकर अपने संपूर्ण जीवन तक यहाँ पर भजन साधन किया। गौड़ीय वैष्णवों में जितने भी रसिक भक्त हुए हैं उनमें से एक अन्यतम या सर्वश्रेष्ठ माना जाए कि रसिक भक्तों में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने श्याम सुंदर रसिक शेखर कृष्ण को राधा जी के चरणों में उनके चरणों की आलता और उनके सिंदूर जब तक उनके वक्षस्थल में उनके मस्तक पर नहीं लगाते हैं तब तक रस साम्राज्य का कोई भी विस्तार नहीं हुआ। इस प्रकार के काव्य कलाओं के द्वारा राधा जी की महिमा को प्रकाशित किया है, इसलिए उन्होंने श्री राधा रस सुधा निधि नामक ग्रंथ को लिखा। इसी प्रकार वृंदावन महिमा मृतम, वृंदावन सतत नवद्वीप शतक, वृंदावन महिमा मृत, ऐसे ऐसे चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ, तो ये समस्त ग्रंथों को उन्होंने प्रणयन किया। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ऐसे रसी और ऐसे वृंदावन के प्रति उन्होंने निष्ठा प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा कि यदि मुझे अपने घर को बेचना है वह सही, अपने स्त्री को बेच देना है वो भी मुझे स्वीकार है, अपने लड़की को भी बीच बाजार में बेच करके यदि आना पड़े तो भी मैं वृंदावन धाम को ही आऊंगा और यही रहूंगा। अर्थात यद्यपि लड़की और स्त्री को बेचना नहीं था परंतु और उनको बेचने की आवश्यकता नहीं, परंतु उन्होंने वृंदावन की निष्ठा दिखलाई कि मुझे वृंदावन वास करने के लिए यदि जीवन में जो कुछ करना है हम सब कुछ कर देंगे और सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ त्याग कर सकते हैं। इस प्रकार वृंदावन धाम वास के प्रति उन्होंने निष्ठा प्रदर्शित कि इसी धूल कण में हम समा जाए, इसलिए उन्होंने सेवा कुंज की एक श्लोक लिखा है, यत किं करिषु बहुश खलु काकु वाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्ड मौले यस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाय तत्केलि कुंज भवनां गणमार्जनिष्यम्। जहाँ पर जिस सेवा कुंज में वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी अवस्थित हैं, कृष्ण से रूठ कर आज माननी बन गई, माननी हो जाने से गोपियों से कहा अरे सखियों तुम लोग दरवाजे पर खड़ी रहना, आज उस श्याम को धूर्त लंपट उस श्याम को यहाँ अंदर आने मत देना। इसी तरह से कहा कि तुम लोग सिर पर कपड़ा ढक करके रखो, काला भ्रमर हमारे नजर के सामने नहीं आवे, हमें कोई भी काला चीज नहीं दिखे, उस काले से हमें कोई मतलब नहीं। इस प्रकार राधा जी ने आज सख्त निर्देश दिया, सखियां द्वार पर खड़ी हैं, श्याम सुंदर आ करके जब किंकरी तू बहुशा खलु काटू वाणी उन किंकरियों के राधा जी की दासियों के चरणों में गिर रहे हैं। खलु काकू वाणी निश्चित रूप में काकुति मिन्ती के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा जी को स्वामिनी जी को मनाने के लिए जिनके दासियों के चरणों में तक गिरते हैं और उनसे मनाते हैं प्रार्थना करते हैं, ऐसे राधा दासित्व की महिमा चरमोत्कर्ष पर दिखलाया। पर ब्रह्म रसिक शेखर शिखंड शेखर मुरली मनोहर राधा जी की दासियों के चरणों में तक झुकते हैं और उनको मनाते हैं राधा जी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे कुंज में जो रसिकेंद्र मौली श्याम सुंदर और रसिका शिरोमणि श्री राधा जी जहाँ पर लीला विनोद करते हैं, रसनिधि रस के निधि स्वरूप जो ब्रशुभानु जाया ब्रशुभानु नंदिनी श्री राधा जी जहाँ पर विराजमान है उस कुंज में झाड़ू लगाने के लिए एक झाड़ू का छेक बन जाऊं, मेरे जीवन की सार्थकता इसी में। इस प्रकार उन्होंने वृंदावन वास में निष्ठा दिखाते हुए ऐसी भावना को प्रकट की।
तो प्रभुरंजन सरस्वती आफ्टर getting mercy of Mahaprabhu came to Vrindavan and stayed here. He did bhajan in the line of servant of Radharani Dasya Bhav. He was so fully devoted to Vrindavan, he was so much dedicated to stay in Vrindavan that he has said, even if I have to sell my everything, my house, my wife, my daughter, my everything, I am ready for that, but I will not give up Vrindavan. I will stay in Vrindavan. By this shloka, he means that he is ready to sacrifice anything in order to live in Vrindavan. Prabhupada Saraswati Path very clearly and unhesitatingly stated and written that how Krishna is trying to please Radharani, for which Jayadev Goswami had hesitation and could not write, and Krishna had to come himself and he wrote it, that Krishna is putting his head on Radharani's feet just to please her. Prabhudana Saraswati says that in fact the climax of Ras Tattva comes only when Krishna puts Alta of Radharani, Alta is always put on feet, when Krishna puts Alta of Radharani on his head, this only then Ras Tattva is created to its climax. He has written it so clearly and unhesitatingly. Prabhudanand Saraswati Pad, he has written a shloka which Shubhanand Prabhu has explained, that for Seva Kunj he has written especially, that in Seva Kunj Radharani, after coming in Man, becoming angry, she ordered that nothing black should be before her at all, even you put your head covered with white cloth. And in such a state, she ordered to paint every black into white, including your eyebrows and also. Because I know this black is, Shyam is dhoot, scoundrel, rascal, and I don't want to see him, and look, be careful, don't allow to let him inside this kunj at all. Go and be watchman, watch ladies, not watchman, watch ladies. And when Krishna came there, and Radha Rani's Pali Dasis, their servants, they are standing on the door and gate of Kunj, Krishna comes and he praying to them, not praying, Kakubhar. Kakubhar means, what should I say, in a very, very menial way, begging and pleading, just putting himself on the feet of those Pali Dasis, begging and pleading, please somehow or other let me see Radharani. In his this shloka he is giving the importance of even the servant of Radharani, that how much these Pali Dasis are important, what to speak of Radharani. So So straightforwardly he is saying like this. He says that Radharani is saying, don't let him in, and he, Krishna is saying, please let me be in. And where such type of pastimes are taking place, Leela is taking place, may I get a single straw of a broom where it is clean, so that I can get this mercy. I want to enable myself in this pastime. So such type of prayers and such type of bhav was Prabhupada Saraswati Pad was having, and we are also in the same line and inclined and intending to have generate such type of.
इस प्रकार श्रील प्रभुदानंद सरस्वती पाद चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में, नवदेव धाम के विषय में अपूर्व अपूर्व महिमा का वर्णन किया है। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि संकीर्तनामृत रसे रमते मनस्ये प्रेमां बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रजातु। यदि संसार समुद्र को पार करना कोई चाहते हैं, संकीर्तनामृत रसे रमते मनस्ते, चैतन्य महाप्रभु जी के संकीर्तन रूपी अमृत रस में कोई अपने मन को निमज्जित करना चाहते हैं, प्रेमां बुधौ विहरणे राधा कृष्ण के प्रेम समुद्र में यदि कोई विहरण करने की इच्छा करता है, तो चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रजातु। रसराज महाभाव मिलित तनु, ऐसे गौर हरि के चरणों में एकांत रूप से आश्रय ग्रहण करें, यदि उस प्रेम रस को आस्वादन करना है। इस प्रकार चैतन्य श्रील प्रभुदानंद सरस्वती पाद जी ने राधा कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु जी की अपूर्व महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ पर रह करके उन्होंने भजन साधन किया, यहीं पर समाधिस्थ हो करके राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश किए हैं। श्री प्रभुदानंद सरस्वती पाद राधा जी की प्रिय सखियों में तुंग विद्या सखी, यहाँ पर भी लिखा है तुंग विद्या सखी। तुंग विद्या जो कि विद्या में सर्वश्रेष्ठ है, समस्त विद्याओं में पारदर्शी है, उनको पुरुष रूप में महाप्रभु जी के परिकर होकर उनकी जो लीलाएं हैं और उनका जो वर्णन है, उनमें जो विद्या की पारदर्शिता, वह भी अतिशय चमत्कार पूर्ण जो हमारे सामने इन ग्रंथों के रूप में उन्होंने प्रकाशन किया है, आज हमारे सामने वही उपलब्ध है। अतः इन कथाओं का आस्वादन करते हुए हम उनकी कृपा भी क्या करते हैं कि हमें इस प्रकार आस्वादन करने की योग्यता और क्षमता प्रदान करें और अपने चरणों में आश्रय दें। यहाँ प्रणाम करते हुए हम लोग सामने काली दह वहाँ पर चलते हैं दर्शन करने। सिमिलरली ही हैज स्टेटेड अबाउट नवदीप आल्सो एंड चैतन्य महाप्रभु, एंड ही हैज रिटन दैट अनलेस वी टेक मर्सी फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु वी कैन नॉट डाइव इनटू, वी कैन नॉट क्रॉस द ओशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। नी सेंस आई थिंक वी कॉल इट नी सेंस नेशियंस, वी कैन नॉट क्रॉस ओवर दिस ओशन ऑफ material world, and not only this, unless we get mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we cannot dive into the ocean of Bhav Bhakti of Radha Krishna love. So we have to be back for his mercy. At the same time, Prabhupadananda Saraswati Pad, for whom we should also beg the same mercy, he was in the mood of Radha Rani Dasya Bhav, and we should beg from him his mercy. And from here we will go onward to Kalyani. Yes, Prabhupada Saraswati Pad, he has explained his incarnation of Tungvidya in that he has come as a male in Leela of Mahaprabhu, and there he was Tungvidya. Tungvidya is expert in all Vidya arts. That is why Prabhupadananda Saraswati was also expert in explaining these things in real intimate Leela of Radha Krishna.
Govinda jai jai Gopal jai.
जो अतिशय प्राचीन कदम्ब वृक्ष कहा जाता है, इसी वृक्ष में ही चल करके कृष्ण ने किसी काली हद में खुदा था। यहाँ पर ये नीचे ये जो परिक्रमा रास्ता है, यहीं पर ये काली हद थी। इसी हद में काली अनाज रहता था। जो आप लोग जानते हैं दशम स्कंद भागवत में काली अगमन प्रसंग है कि काली अनाज विरोध के कारण सौभरे ऋषि के अभिशाप से इस काली हद में गरुड़ नहीं आ पाता था। अर्थात सौभरे ऋषि इसी काली हद के जल में डूब करके यहीं पर तपस्या करते थे। एक दिन गरुड़ आ करके दोनों मछली घूम रहे थे, तो उस समय एक मछली को पकड़ करके खा लिया। खाने से दूसरी मछली रानी मछली अब रोने लगी और ऋषि से प्रार्थना करने लगी। उस समय ऋषि ने उनकी भावना को समझकर, उस रानी मछली की भावना समझ गए और समझ करके बोले, अच्छा गरुड़ ने ऐसा किया, ठीक है, मैं अभिशाप देता हूँ, यह हुआ नहीं आएगा, यदि आएगा तो उसका सिर कट जाएगा। इस प्रकार अभिशाप दिया, तब से गरुड़ आया नहीं। तो गरुड़ भगवान का वाहन है, वैष्णव है, तो उनको अभिशाप देने से अब अपराध हो गया। उस अपराध का परिणाम जो था वो भयावह रूप ले लिया है। सौभरे ऋषि 10,000 वर्ष तक पानी में डूब करके जो तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर, उसके अंदर में एक दिन दोनों मछलियों के परस्पर मिलन संगम को देख करके उसके अंदर में बासना जागृत हुई। यहाँ से तपस्या छोड़कर चल दिए, मंधाता के राजधानी में पहुँचे। मंधाता के दरबार में जा करके उनसे कहा कि आपकी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उस समय मंधाता ने कहा, मेरी लड़की की तो स्वयंवर सभा होगी और वे अपने से जो जिसको चयन करेंगी उसी के साथ शादी होगा, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। आप स्वयंवर सभा में आइए, आपको जब वो लड़की पसंद कर लेगी तब उसके साथ में आप शादी कर सकते हैं। तो ऋषि बोले, अच्छा राजा हमें टाल बहाना कर रहे हैं। बोले, अच्छा ठीक है, मैं आपकी लड़की को एक बार देखना चाहता हूँ। राजा ने देखा, यदि नहीं दिखाए तो अभिशाप दे देंगे, इसलिए कहा अच्छा किसी मंत्री को साथ में दे करके अंदर महल में भेज दिया उस लड़कियों को दिखाने की। मंधाता की 49 लड़कियां थी, 49 लड़कियां, और सुना कि ऐसे ऐसे एक ऋषि आ रहे हैं उन लड़कियों से शादी करने को और देखने के लिए आ रहे हैं। उधर में सौभरे ऋषि ने अपने जोग बल से ऐसा दिव्य रूप देवता का रूप प्रकट किया कि अद्भुत चमत्कार रूप उसके अंदर प्रकाशित हुआ। जब राजभवन के अंदर में प्रवेश किया, अंतपुर में अंदर महल में प्रवेश किया, तो लड़कियां उस ऋषि को देख करके मोहित हो गई कि अपूर्व दिव्य रूप देवता के जैसा। तो एक लड़की क्यों, वहां पर 49 लड़कियां थे, सब जने उसके गले में माला डाल दी और सब ने उनसे शादी कर ली। अब लड़कियों को साथ में लेकर के चल दिए और जा करके जोग बल से अद्भुत अतुल वैभव को प्रकाशित किया, मंधाता से भी कहीं आधी, और 10,000 वर्ष तक उन लड़कियों के साथ में रहते हुए उन स्त्रियों के साथ में भोग विलास में रह गए प्रमत्त होकर। एक दिन उनकी ये स्त्री में से एक पत्नी ने कहा कि अरे शाम हो गई है, अब संध्यानिंग नहीं करेंगे का? इतनी बात पर उसको ध्यान आया, अच्छा मैंने भोगों में 10,000 वर्ष तो ऐसे बिताया, भजन साधन सब छोड़ दिया, उस समय अपने को धिक्कार आया, तो
तो सौभरी ऋषि सबको छोड़ छाड़ कर साधु गुरु वैष्णव के चरणों में आश्रय लिए, आश्रय ले करके फिर से भजन साधन किया, भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो उनके अभिशाप जो था उसी अभिशाप के कारण गरुड़ यहाँ कभी आता नहीं था। कालिया ने जान लिया कि गरुड़ यहाँ नहीं आता है, अतः उससे बचने का ये सुरक्षित उपाय है, इसलिए इस काली हद को आश्रय करके यहीं पर रहने लगा। उसके जहरीले विष से चारों ओर इतना प्रभाव, इतना विष फैल गया, इतना तेज फैला कि उससे जितने पेड़ पौधे थे सब कुछ समाप्त हो गए, राख हो गया। केवल एक ही कदम वृक्ष, यही वृक्ष केवल बचा हुआ था। यह कवि कस्मन बहुत प्राचीन काल में गरुड़ जब स्वर्ग से अमृत लेकर के आए थे, अमृत का कलश लेकर के, तो इसी पेड़ पर आकर के बैठे थे। इसलिए आज भी वो कुंभ मेला लगती है जो लाखों करोड़ों की भीड़ होती है वृंदावन में और इलाहाबाद में, उज्जैन में, हरिद्वार में, चार जगह भारत वर्ष के अंदर कुंभ मेला लगती है। तो उनमें से ये कुंभ मेला जो वृंदावन में लगती है, इसी वजह से इसके ऊपर गरुड़ ने अमृत लेकर के बैठा था, इसलिए अमर वृक्ष है। काली के जहर से तो यहाँ पर इस प्रकार इस वृक्ष के वजह से ही जो कुंभ मेला लगते हैं, तो उस अमृत लेकर के, अमृत का कलश लेकर के बैठने से कालिया के प्रभाव से ये वृक्ष समाप्त नष्ट नहीं हुआ, जैसे के वैसे ही रहे और ऐसे झुकी हुई है। तो कृष्ण ने इसी पर चढ़ करके कमर में दोपट्टा अच्छी तरह से कस लिया और यहाँ पर कूद गए। चार सौ हाथ ऊंचाई तक बीस धनुष, चार सौ हाथ ऊंचाई तक पानी उछल गया। यहाँ के गड्ढे में वो काली रहता था, उसके गड्ढे में पानी चला गया। जाते ही बोले, अरे यहाँ पर कौन है, इतना पानी फैल गया चारों ओर। अपने बांसा से निकला, निकल करके देखा कि अरे श्याम सलोना सुंदर एक बाल, उसे देख के क्रोध के मारे आंखें लाल लाल हो गई। उसी समय उसको काटने के लिए दौड़ा, फन उठाया, इतने में पहले तो पूछ से लपेट लिया कृष्ण को। कृष्ण को लपेट लेने से अब लपेट गए, कोई चिंता नहीं है। इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपने शरीर को फुलाया, जैसे फुलाया तो सांप का एक एक गांठ खुलता चला गया। अब टूट गया सारा शरीर, सारा शरीर टूट जाने से जब काली का कुछ प्रभाव कम हुआ, इतने में बहुत पतला होकर के उस सूक्ष्म रूप से वहां से निकल के आ गए और बाहर पानी में आकर के फिर पानी फेंकते हुए तैरने लगे। उतने में काली ने देखा, अरे ये तो निकल गया। फिर उसे फन से काटने के लिए जैसे दौड़ा, तो इतने में कृष्ण उसके सिर पर चढ़ गए और अपने विश्वंभर भगवान अपने चरणों के प्रहार से कालिये के एक एक फन को ऐसे मारा कि उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। उस समय समस्त फन को दबा दिए और कालिये का प्रभाव संपूर्ण रूप से छीन हो गया। अब उल्टी उल्टी खून की उल्टी करते करते अब प्राण निकलने की स्थिति। उस समय कालिये की पत्नियों ने यहाँ कृष्ण की प्रार्थना की, बोले प्रभु आप इनको मार देंगे तो हम लोग विधवा हो जाएंगी, हम किसके आश्रय में रहें, और आप हमें अनुग्रह करें, इनके प्रति आपने कितना अनुग्रह किया जो चरण राज ब्रह्मा सी बड़े बड़े ऋषि मुनि को प्राप्त नहीं और इस दुष्ट कालियों को प्राप्त हुआ है, आपका परम अनुग्रह है, आप क्षमा करें, इनकी प्राण रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने पर कृष्ण ने उनको प्राण रक्षा की, उनको बचाया। तब कालिया जान गए कि ये साधारण नहीं है, ये स्वयं परब्रह्म भगवान है। तब उनके चरणों में नतमस्तक हो करके प्रणाम किया, स्तव स्तुति प्रार्थना की और कौस्तुभ मणि और मणियों को लेकर के कृष्ण को उपहार दिया। कृष्ण ने कहा कि हमारा ये लीला विलास का स्थान है,
तुम इस स्थान में रहने से परेशानी होगी, तुम अपने सपरिवार रमणस द्वीप में चले जाओ और वहाँ जा करके रहो। मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर, इस चिन्ह से गरुड़ कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इस प्रकार कालिया अपने परिवार सहित रमणस द्वीप में गए और यहाँ पर कृष्ण ने इस प्रकार काली दमन लीला की। यही प्रसिद्ध स्थान है काली हद और यही कदम्ब वृक्ष है। आज से कृष्ण लीला की साक्षी जिन्होंने कृष्ण का चरण स्पर्श पाया और तब से आज भी वह वृक्ष इसी रूप में विद्यमान।
हरे कृष्णा, दिस इज कालिया दह।
हियर ड्यूरिंग द पास टाइम ऑफ कृष्णा वेरी वेरी फ्यूरियस एंड पॉइजनस स्नेक सर्पेंट कालिया वॉज लिविंग हियर। In fact, this was the place where once upon a time Sobhri Rishi was doing austerity